آج ہمارا بہار شریعت سے مرتد کے احکام کے بارے میں چوتھا درس ہے. اب یہاں پہ علامہ صاحب نے دو تین مسائل مرتد کے بارے میں وہ لکھے ہیں کہ جس میں مرتد اگر دارالحرب کو چلا جائے, یعنی دارالاسلام کو چھوڑ کر کے دارالحرب کو چلا جائے, یا قاضی اسے دارالحرب میں بھیجنے کا حکم دے دے کہ اس کو اب اسلامی ملک میں نہیں رہنا چاہیے, اور پھر وہ واپس آئے تو اس کی وراثت یا اس کی دولت کی تقسیم وغیرہ کیسی کی جائے گی, اس پہ مسائل لکھے ہوئے ہیں جو ابھی فی الحال ہم اس کو چھوڑ دیں گے, آگے کا کچھ حصہ پڑھ لیتے ہیں. اس میں ایک مسئلہ یہ بھی آتا ہے کہ مرتد جو ہے ہبا قبول کر سکتا ہے, مرتد کوئی تحفہ لے سکتا ہے, اور اپنے جو غلام ہے اور ام ولد ہے, یعنی اپنے بیٹے کی یعنی بچے کی جو ماں ہے کنیز, اس کنیز کو آزاد بھی ام ولد کر سکتا ہے, یعنی اس کے بیٹے کو اس کے بچے کو اپنے نام دے سکتا ہے وغیرہ وغیرہ. یہ مسائل ہیں, لیکن آج کے دور میں ان مسائل کی اتنی زیادہ توجہ یا ضرورت محسوس نہیں ہوتی. ہم اس کو آگے پڑھتے ہیں کہ جس میں علامہ صاحب نے تنبیہ کے طور پہ کلمات کفر لکھے ہیں, ان میں سے کچھ آج پڑھیں گے, اور پھر انشاءاللہ ایک دو نشست میں ہم یہ بیان پورا کریں گے. علامہ صاحب یہاں پہ لکھتے ہیں تنبیہ, زمانے حال میں جو لوگ باوجود ادعائے اسلام یعنی اسلام کا دعویٰ کرتے ہوئے کلمات کفر بکتے ہیں یا کفری عقائد رکھتے ہیں, ان کے اقوال و افعال کا بیان حصہ اول میں گزرا. یعنی ہم نے جو بہار شریف کا حصہ اول پڑھا اس میں یہ سب چیزیں ہم نے پڑھ لی ان کے عقائد وغیرہ کے بارے میں, اور یہاں پر چند دیگر کلمات کفر جو لوگوں سے صادر ہوتے ہیں بیان کیے جاتے ہیں تاکہ ان کا بھی علم حاصل ہو اور ایسی باتوں سے توبہ کی جائے اور اسلامی حدود کی محافظت کی جائے. تو ارشاد فرماتے ہیں مسئلہ نمبر 24, جس شخص کو اپنے ایمان میں شک ہو, یعنی کہتا ہے کہ مجھے اپنے مومن ہونے کا یقین نہیں, یا یہ کہتا ہے کہ معلوم نہیں میں مومن ہوں یا کافر, تو وہ کافر ہے. ہاں اگر اس کا مطلب یہ ہو کہ معلوم نہیں میرا خاتمہ ایمان پہ ہوگا یا نہیں, تو پھر کافر نہیں. جو شخص ایمان و کفر کو ایک سمجھے, یعنی کہتا ہے کہ سب ٹھیک ہے خدا کو سب پسند ہے, وہ کافر ہے. یوں ہی جو شخص ایمان پر راضی نہیں یا کفر پر راضی ہے وہ بھی کافر ہے, وہ بھی کافر ہے. تو یہ مسئلے حالانکہ اتنے صاف اور آسان ہیں سمجھنے کے لیے, بلکہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جن کو یہ سب سمجھانے کی ضرورت نہیں پڑنی چاہیے, لیکن جہالت اتنی زیادہ سراعت کر گئی ہے لوگوں میں کہ اتنے آسان سے مسائل جو شاید کسی کو بیٹھ کے سمجھانے کی ضرورت بھی نہ پڑے, وہ بھی ان کے ذہن میں نہیں آتے کہ کفر سے راضی ہونا بھی کفر ہے, بت پرستی سے راضی ہونا کفر ہے. اس طرح کی چیزیں تو عام آدمی کے ذہن میں خود بخود بیٹھ جانی چاہیے, لیکن علامہ صاحب پھر بھی لکھتے ہیں. یہ اس لیے لکھنا پڑ رہا ہے, سمجھانا پڑ رہا ہے کہ آج کا اتنا خراب دور آ گیا ہے, اتنی جہالت پھیل چکی ہے, اور نام نہاد مولوی بھی وہ کفر سے رضامندی کا اظہار بھی کرتے ہیں, بلکہ لوگوں کو تعلیم بھی دیتے ہیں کہ معاذ اللہ تمام مذہب ایک جیسے ہی ہے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو تمام مذہب پسند ہے, حالانکہ قرآن میں کئی جگہ پر دوسرے ادیان کا رد فرمایا گیا ہے. اگرچہ وہ مذہب ایک خدا میں بلیو کرتے ہوں, ایک خدا میں یقین کرتے ہوں, تب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام, اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک صرف اسلام دین ہے, دوسرا کوئی دین نہیں ہے. اور دوسری جگہ ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص کسی اور دین کے ذریعے اللہ کے پاس آیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہرگز اس کو قبول نہیں فرمائے گا. تو پھر سے یہاں پر پڑھ لیتے ہیں کہ جس شخص کو اپنے ایمان میں شک ہو, یعنی کہتا ہے کہ مجھے اپنے مومن ہونے کا یقین نہیں, یا کہتا ہے کہ معلوم نہیں کہ مومن ہوں یا کافر, تو وہ کافر ہے. اب یہاں پہ ایک مسئلہ ہے ہمارے علماء نے عقائد کے کتاب میں یہ لکھا کہ اگر کسی کو پوچھا جائے کہ تو مومن ہے یا غیر مومن تو اس کو جواب دینا چاہیے کہ میں مومن ہوں, میں مومن ہوں. اور ہمارے علماء نے یہاں تک لکھا کہ اگر اس نے کہا میں مومن ہوں انشاءاللہ تو یہ اس نے گناہ کیا, یہ اس نے غلطی کی. اس کو صرف اتنا کہنا چاہیے کہ میں مومن ہوں. اگر وہ کہتا ہے انشاءاللہ تو اس کا مطلب ہے کہ خود پہ اس کو اس کے اپنے ایمان پہ یقین نہیں ہے. تو بعض علماء نے اس پہ اس جملے کو جو ہے منع فرمایا. اکثر ہمارے جمہور علماء نے اہل سنت کے جو ہے انہوں نے اس جملے پر جو ہے وہ اعراض فرمایا اور کہا اس طرح ہرگز نہ کہے, بس اتنا کہے کہ میں مومن ہوں. اگر یہ کہنا چاہتا ہے کہ میں انشاءاللہ ایمان پر ہی مروں گا اللہ کے کرم سے تو وہ بات دوسری ہے, لیکن یہ نہ کہے کہ میں مومن ہوں انشاءاللہ تو یہ اس کا جملہ صحیح نہیں ہے. لیکن جو یہ کہے کہ مجھے پتہ نہیں ہے میں مسلمان ہوں یا مومن ہوں یا نہیں ہوں تو وہ یا کافر ہوں ایسا کہتا ہے تو وہ کافر ہی ہے. ہاں اگر اس کا مطلب یہ ہو کہ معلوم نہیں کہ میرا خاتمہ ایمان پر ہوگا یا نہیں تو پھر کافر نہیں کہیں گے, کیونکہ وہ یہ اپنے ایمان کا انکار نہیں کر رہا, ایمان کا تو اقرار کر رہا ہے, صرف اس کو ڈر ہے, کہتا ہے مجھے معلوم نہیں ہے کہ میرا خاتمہ کس پہ ہوگا. جو شخص ایمان اور کفر کو ایک سمجھے, یعنی کہتا ہے کہ سب ٹھیک ہے, خدا کو سب پسند ہے, وہ یقیناً کافر ہے, وہ یقیناً کافر ہے. کیونکہ اگر سب ٹھیک ہوتا تو پھر لا الہ الا اللہ کا مطلب کیا ہو گیا؟ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں, کوئی عبادت کے لائق نہیں, کوئی خدا نہیں, تو پھر اس کا مطلب تو تو نے اپنے دل میں اتارا ہی نہیں ہے, اس کو تو سچ مانتا ہی نہیں ہے. جب تو کہتا ہے دوسرے بھی معاذ اللہ صحیح ہے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ تو لا الہ الا اللہ میں یقین رکھتا ہی نہیں ہے. تو جیسے اس نے اگر یہ کہا کہ کفر اور ایمان ایک جیسی چیزیں ہیں تو دونوں ٹھیک ہیں تو معاذ اللہ وہ کافر ہے. یوں ہی جو شخص ایمان پر راضی نہیں یا کفر پر راضی ہے تو وہ بھی کافر ہے. ٹھیک ہے, کفر پر راضی ہونا کفر ہے, یہ واضح طور پہ سب کو پتہ ہے. مسئلہ نمبر 25, ایک شخص گناہ کرتا ہے, لوگوں نے اسے منع کیا تو کہنے لگا اسلام کا کام اسی طرح کرنا چاہیے, یعنی جو گناہ و معصیت کو اسلام کہتا ہے وہ کافر ہے, وہ کافر ہے. یوں ہی کسی نے دوسرے سے کہا میں مسلمان ہوں اور اس نے جواب میں کہا تجھ پر بھی لعنت اور معاذ اللہ اور تیرے اسلام پر بھی لعنت, ایسا کہنے والا کافر ہے. مسلمان پہ لعنت بھیجنا تو گناہ ہے ہی ویسے ہی, ٹھیک ہے, اور اسے ساتھ ساتھ میں کیا کہ تیرے اسلام پر بھی لعنت, ایسا کہنے والا کافر ہے. اور ہم نے پچھلے ایک سوال کا جواب بھی یہ دیا تھا کہ اگر کوئی شخص کسی کو کہے کہ تیرے جیسے مسلمان سے تو کافر اچھے تو وہ بھی کفریہ جملہ ہے. تو یہاں پر وہی اسی بات کی طرف اشارہ دے رہے ہیں کہ اگر وہ کہتا ہے کہ تجھ پر لعنت اور تیرے اسلام پر بھی لعنت تو ایسا کہنے والا کافر ہے. مسئلہ نمبر 26, اگر یہ کہا خدا مجھے اس کام کے لیے حکم دیتا جب بھی نہ کرتا تو کافر ہے. خدا مجھے اگر اس کام کا یا اس کام کے لیے حکم دیتا جب بھی نہ کرتا تو یہ کہنے والا کافر ہے. یوں ہی ایک نے دوسرے سے کہا میں اور تم خدا کے حکم کے موافق کام کریں, دوسرے نے کہا میں خدا کا حکم نہیں جانتا, یا کہا یہاں کسی کا حکم نہیں چلتا, تو وہ کافر ہو گیا. مسئلہ نمبر 27, کوئی شخص بیمار نہیں ہوتا یا بہت بوڑھا ہے مرتا نہیں, اس کے لیے یہ کہنا کہ اسے اللہ میاں بھول گئے ہیں یا کسی زبان دراز آدمی سے کہنا کہ خدا تمہاری زبان کا مقابلہ کر ہی نہیں سکتا, میں کس طرح کروں, یہ کفر ہے. یوں ہی ایک نے دوسرے سے کہا اپنی عورت کو قابو میں نہیں رکھتا, اس نے کہا عورتوں پر خدا کو تو قدرت ہے نہیں, مجھ کو کہاں سے ہوگی, تو یہ جملہ کفریہ ہے, اس نے کفر کا کفر بکا. تو یہاں پر تین چیزیں علامہ صاحب نے واضح فرما دی کہ لوگ جو ہے نا مذاق میں ایسی باتیں بولتے ہیں, وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے بہت بڑا تیر مار لیا یہ جملہ بول کر کے, اور بہت اچھا جو ہے نا وہ ایک تجزیہ پیش کر دیا, ہماری زبان کتنی اچھی ہے, ہمارے کمنٹس کتنے اچھے ہیں, اس طرح کی بکواس وہ کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم نے بہت ہی جو ہے نا اعلیٰ قسم کا جملہ بولا حالانکہ وہ صریح کفر ہے. جیسے کوئی بہت بوڑھا ہے یا کوئی بیمار کبھی ہوتا ہی نہیں ہے, ہاں تو اس کے لیے مذاق میں کہتے ہیں, مذاق اس کا اڑا رہے ہیں, لیکن کہتے ہیں کیا کہ اللہ تعالیٰ اس کو بھول گیا ہے. تو اللہ تعالیٰ بھولنے سے پاک ہے, اللہ تعالیٰ بھولنے سے پاک ہے. تو یہ مذاق میں کہا اور اللہ کے اوپر بھی مذاق آیا کہ اللہ میں تو اس کو بھول ہی گئے معاذ اللہ, تو پھر اس کو کافر کرا دیا کہ یہ جو ہے جملہ کفر ہے. اور کسی زبان دراز آدمی, یعنی جو آدمی بہت زیادہ باتیں کرتا ہے اور بہت زیادہ محجت بازی کرتا ہے, بہت زیادہ جو ہے وہ مقابلہ کرتا ہے زبان سے, تو اس سے کہنا کہ خدا بھی تمہاری زبان کا مقابلہ نہیں کر سکتا, میں کیسے کروں, تو یہاں پر اس نے معاذ اللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو عاجز مجبور بتایا, لہٰذا یہ جملہ بھی کفر ہے. پھر آگے یوں ہی ایک نے دوسرے سے کہا اپنی عورت کو قابو میں نہیں رکھتا, تو اس نے یعنی سامنے والے نے کہا کہ عورتوں پر تو خدا کو بھی قدرت نہیں, مجھ کو کہاں سے ہوگی. تو معاذ اللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو مجبور مانا اور یہ کفر ہے. اسی طرح ایک اور جگہ پر کہ لوگ کہتے ہیں, ایک پاکستان میں ایک میرا خیال ایک مشہور ایک وہ ہوا تھا جملہ, کسی گانے بجانے والے نے بولا تھا کہ حسینوں کو آتے ہیں کیا کیا بہانے, حسینوں کو آتے ہیں کیا کیا بہانے, خدا بھی نہ جانے تو ہم کیسے جانے, معاذ اللہ رب العالمین. یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کو کہ علم کی اس نے نفی کی اور معاذ اللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے نہ جاننے کا جو ہے الزام لگایا, تو یہ کفر ہے. کل ایک بات کے لیے اوپر جو ہے وہ سوال ہوا تھا, وہ یہاں پر ماشاءاللہ جواب آ گیا. مسئلہ نمبر 27, خدا کے لیے مکان ثابت کرنا کفر ہے کہ وہ مکان سے پاک ہے. یہ کہنا کہ اوپر خدا ہے نیچے تم ہو, یہ کلمہ کفر ہے. اوپر خدا ہے نیچے تم ہو, یہ کلمہ کفر ہے. تو اللہ تعالیٰ صاحب نے جو ہے نا یہ علم کلام کا ایک بہت ہی اہم مسئلہ یہاں پر چند سطروں میں لکھ دیا ہے. کہتے ہیں کہ خدا کے لیے مکان ثابت کرنا کفر ہے, کہ یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے کرسی پر بیٹھا ہوا ہے اور فلاں جگہ پر فکسڈ ہے اور وہاں سے سب چیزیں وہ جو ہے وہ کنٹرول کر رہا ہے وہاں بیٹھے بیٹھے, اس طرح کی, یا کہنا کہ ایک جگہ پر ہے ٹھیک, یا ایسی اتنی لمبائی چوڑائی ہے اس سیٹ کی یا کرسی کی ویسی ویسی, مطلب اس کو ڈسکرائب کرنا مکان کی سائز وغیرہ, ان طرح کی چیزیں, ان سب چیزوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ پاک ہے, اس کے لیے اس طرح کی چیزیں ثابت کرنا کفر ہے کیونکہ وہ مکان سے پاک ہے. اور یہ کہنا کہ شکروں کے جو ہے نا کسی پہ بھروسہ کرتے ہیں یا کسی کچھ کام دیتے ہیں اور کہتے ہیں تم میرا کام کر دو, تمہارے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا, ٹھیک ہے, تو اس کے ساتھ ساتھ یہ بولتے ہیں کہ میں اللہ پہ بھروسہ کرتا ہوں, اوپر اللہ تعالیٰ ہے نیچے زمین پہ تم, تو یہ جملہ کفر ہے. مسئلہ نمبر 28, کسی سے کہا کہ گناہ نہ کر ورنہ خدا تجھے جہنم میں ڈالے گا, اس نے جواب میں کہا میں جہنم سے نہیں ڈرتا, یا یہ کہا خدا کے عذاب کی مجھے کچھ پرواہ نہیں, یا ایک نے دوسرے سے کہا تو خدا سے نہیں ڈرتا, اس نے یعنی جواب میں غصے میں کہا, یا اس نے جواب میں کہا نہیں ڈرتا, یا یہ کہا خدا کیا کر سکتا ہے اس کے سوا, کیا کر سکتا ہے کہ دوزخ میں ڈال دے, یا یہ کہہ دیا کہ خدا سے ڈر, اس نے جامنے سے جواب دیا خدا کہاں ہے, یہ سب کفر کے کلمات ہیں, یہ سب کفر کے کلمات ہیں. تو اکثر ایسا ہوتا ہے, ابھی دیکھیں اس میں تھوڑی سی وضاحت میں چاہوں گا کہ جب آپ کو محسوس ہو کہ کوئی آدمی بہت ہی بدتمیز ہے اور مغرور ہے اور نہایت ہی عناد والا ہے, تو اس کو اس وقت ہدایت کرنے کی کوشش نہ کریں جب محسوس ہو کہ یہ معاذ اللہ کفر کے گڑھے میں جا گرے گا. ٹھیک ہے, ایسا ہی ہوا کہ آپ نے کسی کو گناہ کرتے ہوئے دیکھا, اب آپ کو پتہ ہے کہ اگر میں اس گناہ سے روکوں گا تو یہ کفریہ کلمہ بولے گا, تو آپ خود محسوس کریں اس چیز کو اور اس بات سے اجتناب کریں, کیونکہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ کسی کو کہتے ہو اور آپ یوں سمجھ لیجئے کہ وہ اتنا ضدی یا اتنا نالائق قسم کا آدمی ہوتا ہے کہ وہ گناہ تو کر رہا ہے لیکن جب آپ اس کو کچھ بولیں گے تو اس کو موقع ملتا ہے کفر بکنے کا, تو آپ جو ہے نا کوشش یہ کریں کہ ایسے لوگوں سے اس وقت اجتناب کرے کہ جس میں یہ لگے کہ یہ معاذ اللہ میری بات سننے کے بدلے رد کرے گا بلکہ معاذ اللہ کفر بک دے گا، تو اس سے بچنا بہتر ہے۔ مسئلہ نمبر 29، کسی سے کہا انشاءاللہ تم اس کام کو کرو گے اور اس نے کہا میں بغیر انشاءاللہ کروں گا، یا ایک نے دوسرے پر ظلم کیا تو مظلوم نے کہا خدا نے مقدر کیا تھا، ظالم نے کہا میں بغیر اللہ کے مقدر کیے کے بغیر ہی کرتا ہوں، یہ کفر ہے، یہ کفر ہے۔ یعنی دو جملے آپ سے سن لیجئے، کسی سے کہا انشاءاللہ تم یہ کام کرو گے تو وہ کہتا ہے میں تو بغیر انشاءاللہ ہی یہ کر دوں گا، یہ کفر ہے۔ یا پھر کسی نے ظلم کیا تو مظلوم جو ہے اس نے ظالم سے کہا کہ تقدیر میں یہ لکھا ہوا تھا، تو ظالم نے کہا میں بغیر اللہ کی تقدیر لکھے ہوئے مقدر کیے ہوئے یہ کرتا ہوں، یہ معاذ اللہ کفر ہے۔ مسئلہ نمبر 30، کسی مسکین نے اپنی محتاجی کو دیکھ کر یہ کہا اے خدا فلاں بھی تیرا بندہ ہے، اس کو تو نے کتنی نعمتیں دی رکھی ہیں اور میں بھی تیرا بندہ ہوں، مجھے کس قدر رنج و تکلیف دیتا ہے، آخر یہ کیا انصاف ہے؟ ایسا کہنا کفر ہے۔ اس لیے کہ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کام کے لیے یہ کہا کہ انصاف نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ پر ظلم جو ہے وہ اس نے الزام لگایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ معاذ اللہ ظلم فرماتا ہے، تو یہ کفر ہے۔ اور حدیث پاک میں آیا ہے، اسی لیے فرمایا قادل فقر و ان یکون کفران، کہ محتاجی کفر کے قریب ہے، محتاجی کفر کے قریب ہے، کہ جب محتاجی کے سبب ایسے ناملائم کلمات صادر ہوں جو کفر ہیں تو گویا خود محتاجی قریب کفر ہے، سمجھ بات ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی محتاجی اور ایسی بہت ہی مجبوری والی غربت وغیرہ سے انسان کو بچائے کہ جس میں انسان جو ہے اپنی زبان پہ قابو نہ رکھ سکے۔ یہ مقام جو ہے اولیاء اکرام کے پاس ہوتا ہے کہ وہ صبر کی انتہا تک پہنچتے ہیں، اس میں بھی جو ہے وہ امتحانات میں سے گزرتے ہوئے بھی صبر بھی کرتے ہیں اور شکر بھی ادا کرتے رہتے ہیں۔ مسئلہ نمبر 31، اللہ عز و جل کے نام کی تصغیر کرنا کفر ہے، جیسے کسی کا نام عبداللہ یا عبدالخالق یا عبدالرحمن ہو، اسے پکارنے میں آخر میں الف وغیرہ ایسے حروف ملا دیں جس سے تصغیر سمجھی جاتی ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ خود ارشاد فرماتا ہے وللہ الاسماء الحسنی فادعوہ بہا، کہ اللہ ہی کے نام تمام کے تمام خوبصورت ہیں، سب سے بہترین نام اسی کے ہیں، تو ان کے ساتھ اس کو پکارا کرو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کو بگاڑنا یا اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کے ساتھ ایسا کوئی حرف ملا دینا جس سے تصغیر یعنی چھوٹا پن محسوس ہوتا ہو، جس طرح عربی گرامر میں بعض حرف لگانے سے، بعض حروف لگانے سے بڑے کو چھوٹا کر دیا جاتا ہے، جیسے عمر ہے، عمر مطلب خوشحال نصیب دار، اگر عمیر لگا دیا جائے تو اس کا مطلب ہوتا ہے چھوٹا عمر، چھوٹا عمر۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کے ساتھ یہ نہیں کر سکتے، سمجھ بات آئی؟ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کے ساتھ ایسا کرنا یہ کفر ہے۔ مسئلہ نمبر 32، ایک شخص نماز پڑھ رہا ہے، اس کا لڑکا باپ کو تلاش کر رہا تھا اور روتا تھا، کسی نے کہا چپ رہے تیرا باپ اللہ اللہ کرتا ہے، یہ کہنا کفر نہیں، کیونکہ اس کے معنی یہ ہیں کہ خدا کی یاد کرتا ہے، تیرا باپ اللہ اللہ کرتا ہے، تو اللہ اللہ جو ہے یہ اللہ کا نام بھی ہے اور اللہ اللہ کی ذات بھی ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پر بولنے کا مقصد یہ کہ وہ اللہ اللہ نام پکار رہا ہے، تو یہاں پر یہ جملہ جو ہے اس کو کفر نہ کہیں گے۔ اور بعض جاہل یہ کہتے ہیں کہ لا الہ پڑھتا رہے، لا الہ پڑھتا ہے، یہ بہت قبیح ہے، یہ بہت ہی قبیح ہے۔ کچھ لوگ دیکھتے ہیں نماز پڑھ رہا ہے بندہ اور کسی کو بتانا تو وہ کیا کرے، تو وہ لا الہ پڑھ رہا ہے، تو لا الہ جو ہے یہ تو نفی ہے کہ نہیں ہے کوئی خدا، ان کو پورا کلمہ کہنا چاہیے، لا الہ الا اللہ پڑھ رہا ہے وہ یا نماز پڑھ رہا ہے، اس طرح کہنا چاہیے۔ تو علامہ صاحب فرماتے ہیں کہ اس میں کیونکہ جملے کو بھی آدھے سے بھی آدھا کر دیا، توڑ دیا، تو یہاں پر اس میں تو खुदाई की और माबूद की या इलाह की नफी है, तो ये कहना बहुत ही बुरा है, कभी काम है, जिसका मतलब ये होता है कि कोई खुदा नहीं, और ये माना कुफ्र है, ये माना कुफ्र है। अगर इसी माने को ध्यान में रख करके और इसी नियत से कहा तो यकीनन कुफ्र है, ठीक है, कि ला इलाहा है ना, ला इलाहा का मतलब कोई खुदा नहीं। अगर पूरा कहना चाहिए ला इलाहा इल्लल्लाह, कोई खुदा नहीं है सिवाय अल्लाह तबारक व तआला के। मसला नंबर 33, अम्बिया अलैहिस्सलाम की तौहीन करना, उनकी जनाब में गुस्ताखी करना, या उनको फवाहिश वो बेहयाई की तरफ मंसूब करना कुफ्र है। मसलन माद अल्लाह यूसुफ अलैहिस्सलाम को जिना की तरफ निस्बत करना, ये कुफ्र है। तो अम्बिया अलैहिस्सलाम की शान में तौहीन करना, या उनकी जनाब में गुस्ताखी करना, या उनकी तरफ बुरी बातें और बेहयाई मंसूब करना, ये सब कुफ्र है। और जिस तरह मसाल देते हैं, मसलन माद अल्लाह यूसुफ अलैहिस्सलाम को जिना की तरफ निस्बत करना, ये कुफ्र है। हमारा ये अकीदा है अहले सुन्नत का कि तमाम अम्बिया अलैहिस्सलाम मासूम है, क्या है, मासूम है। और इस्मत अम्बिया जो है ये हमारे अकायदे अहले सुन्नत का एक जुज है कि तमाम अम्बिया अलैहिस्सलाम ये तमाम के तमाम गुनाहों से पाक मासूम हैं। जो बज़ाहिर लग्जिश या कोताही या फैसले में जो है वो नज़र आया कि फैसला यूं करने के बजाय यूं कर दिया, तो वो अल्लाह तबारक व ताला की तरफ से, यूँ समझ लीजिए कि हमारे फ़ायदे के लिए, वो जो कुछ भी हुआ वो सब बाद में आने वालों के लिए फ़ायदे में हुआ। अब इसकी मिसाल देखिए, अगर आदम अलैहिस्सलाम जन्नत में वो फल ना खाते, तो आज ना हम यहाँ पर हज करते, न नमाज़ें पढ़ते, न कलमे पढ़ते, न रोज़े रखते, है ना। तो उनकी ये जो है ये फैसले में जो नामुनासिबत हुई, हाँ, उस फैसले का फ़ायदा ये हुआ कि दुनिया में तमाम के तमाम लोग आए, यहाँ पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इबादत करते हैं। ये अल्लाह ताला के फैसले हैं। इसीलिए हदीस पाक में आया कि बड़ों की जो बज़ाहिर गलतियाँ हैं, बड़ों की जो बज़ाहिर गलतियाँ हैं, वो छोटों की नेकियों से भी अफजल होती है, छोटों की नेकियों से भी अफजल होती है। ये मसला बहुत ज़रूरी है, इसको हम पढ़ लेते हैं। मसला नंबर 34, जो शख्स हुजूर अकदस सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को तमाम अम्बिया में आखिर नबी न जाने, या हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की किसी चीज़ की तौहीन करे, या ऐब लगाए, आपके मुंह मुबारक को तहकीर से याद करे, आपके लिबास मुबारक को माज़ल्लाह गंदा और मैला बताए, और हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के नाखून को बड़े बड़े कहे, ये सब कुफ्र है। बल्कि अगर किसी के उस कहने पर कि हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को कद्दू पसंद था, कोई ये कहे कि मुझे माज़ल्लाह पसंद नहीं, तो बाज़ उलमा के नज़दीक काफिर है। और हकीकत यह है कि अगर उस हैसियत से उसे नापसंद है कि हुजूर को पसंद था, तो काफिर है। अगर इसलिए उसको पसंद नहीं कि हुजूर को पसंद है, तो फिर काफिर हो गया, काफिर है। यूं ही किसी ने यह कहा कि हुजूर अकदस सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम खाना तनावुल फरमाने के बाद 3 बार अंगुश्ताहे मुबारक को चाट लिया करते थे, उस पर किसी ने कहा, ये हुजूर सल्लल्लाहु तआला वसल्लम की ये सुन्नत मुबारक के बारे में कहा कि ये अदब के ख़िलाफ़ है, या किसी सुन्नत की तहकीर करे, मसलन दाढ़ी बढ़ाना, मूछें कम करना, अमामा शरीफ बांधना या शमला लटकाना, उनकी तौहीन करे, अहानत करे, ये कुफ्र है। जबकि सुन्नत की तौहीन मकसूद हो, यानी सुन्नत पाक की तौहीन उसका मकसद हो कि इसकी तौहीन करना है, तो ये यकीनन कुफ्र है। अल्हम्दुलिल्लाह, ये हमारा बाहर शरीयत से मुर्तद का बयान, यानी मुर्तद के जो अहकाम है उस पर से ये दर्स चल रहा है। आज की ये 5वीं नशिस्त है, और इसमें हम उन मसाइल तक पहुंच गए हैं जिसमें अल्लामा साहब ने मिसालें पेश की हैं कि इंसान किस तरह अपनी ज़बान से माज़ अल्लाह कुफर बक देता है, और अक्सर उसको पता भी नहीं होता है। तो वो कुछ मिसालें आपने यहाँ लिखी हैं और उसके अहकाम भी लिखे हैं, तो उसमें हम 34 पढ़ चुके थे। मसला नंबर 35, अब जो अपने को कहे मैं पैगंबर हूँ और उसका मतलब ये बताए कि मैं पैगाम पहुँचाता हूँ, वो काफिर है। यानी ये तावील मस्मू नहीं कि उर्फ में ये लफ्ज़ रसूल नबी के माने में है। जैसे लफ्ज़ रसूल का मतलब ही है कोई पैगाम लाने वाला, कोई पैगाम लाने वाला। और उर्फ आम में अब ये जो लफ्ज़ है लफ्ज़ रसूल, इसका माना यही बनता है कि अल्लाह का भेजा हुआ, अल्लाह की तरफ से कोई पैगाम लाने वाला। तो अगर कोई शख्स आम तौर पे जो एक जगह से दूसरी जगह डाक लेके जाता है, पैगाम पहुंचाता है, वो अपने आप को ये कहे माद अल्लाह कि मैं पैगंबर हूँ और उसकी तावील ये निकाले कि मैं तो पैगाम पहुंचाता हूँ लिहाजा मैं अपने आप को पैगंबर बोल सकता हूँ, तो ये उसकी तावील कबूल नहीं की जाएगी और वो काफिर माना जाएगा। इसलिए कि ये लफ्ज़ पैगंबर जो है ये उर्फ आम में रसूल और नबी के माने में ही लिया जाता है। मसला नंबर 36, हजरात शेखैन, शेखैन से मुराद दो शेख। दो शेख कौन? सैदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और सैदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मुराद हैं। तो शरीयत में जब भी शेखैन कहा जाएगा तो पूरे नाम न भी लिए जाएं तो इन दो हजरात से मुराद होती है कि ये दोनों हजरत मुराद हैं, हजरात मुराद हैं। तो मसला नंबर 36, हजरत शेखैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा की शान पाक में सुब्ब व शितम करना, तबर्रा कहना, या हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की सहाबियत या इमामत व खिलाफत से इनकार करना कुफ्र है। ये आलमगीरी वगैरह में सब में मौजूद लिखा मौजूद है। और हज़रत उम्मुल मोमिनीन सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की शान पाक में कज़फ़ जैसी नापाक तोहमत लगाना यकीनन क़तअन कुफ्र है। यहाँ पर तीन मसाइल लिखे। तो पहला मसला ये है कि जो पहले अव्वल दो खलीफा हैं, सैदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और सैदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, इनकी शान में गाली बकना, गलीज किस्म की बातें कहना उनके बारे में और उन पर लानत भेजना, तबर्रा वगैरह करना, ये कुफ्र है। ये कुफ्र है, बिल इत्तेफाक अहले सुन्नत का ये मसला है कि ये कुफ्र है। और सिर्फ सैदना हज़रत सिद्दीक अकबर की सहाबियत, यानी इस चीज़ का इनकार करना कि हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पे आप ईमान लाए नहीं और माज़ल्लाह मुनाफिकत इख्तियार की थी और निफाक पे इंतकाल किया, अगर ये दावा करे, ये नहीं कि हुजूर के साथ ही नहीं थे, सहाबियत से मुराद ये कि ईमान के साथ दुनिया में रहे, हुजूर के साथ जो है सोहबत रही उनकी, जो है अपनी आँखों से हुजूर को ईमान की आँखों के साथ देखा और फिर ईमान की हालत में दुनिया से गए, इस चीज़ का सैदना अबू बकर सिद्दीक के वास्ते इनकार करे, या उनकी इमामत का कि वो हमारे इमाम है या नहीं है, या उनकी खिलाफत सही नहीं है, सही है या नहीं है, इन चीज़ों का इनकार करे, ये कुफ्र है। तो उनकी खिलाफत का इनकार करना, उनकी इमामत का इनकार करना और उनका सहाबी होने का इनकार करना, ये तीनों बातें सैदना अबू बकर सिद्दीक के बारे में अगर कोई करे तो माज़ल्लाह ये कुफ्र है। और हज़रत उम्मुल मोमिनीन सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की शान पाक में माज़ल्लाह क़ज़फ़, क़ज़फ़ यानी ज़िना का इल्ज़ाम लगाना, बहतान लगाना, तो वो बहतान जैसे नापाक बहतान लगाना, तोहमत लगाना, ये यकीनन क़तअन कुफ्र है। और ये इसलिए कुफ्र है कि अल्लाह तबारक व ताला ने क़ुरान पाक में आपकी पाक दामनी की गवाही दे दी। तो जो सैदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के बारे में ये अकीदा रखे और माज़ल्लाह बहतान लगाए तो वो क़ुरान का मुनकिर है, अल्लाह तबारक व ताला को वो सच्चा नहीं मानता, माज़ अल्लाह रब्बुल आलमीन। मसला नंबर 37, दुश्मन व मकबूद को देखकर ये कहना मलिकुल मौत आ गए, या कहा उसे वैसा ही दुश्मन जानता हूँ जैसा मलिकुल मौत को, उसमें अगर मलिकुल मौत को बुरा कहना है तो कुफ्र है। और मौत की नापसंदीदगी की बिना पर है तो कुफ्र नहीं। यूं ही जिब्रील या मिकाइल या किसी फरिश्ते को जो शख्स ऐब लगाए या तौहीन करे काफिर है। फिर से मैं अर्ज़ करता हूँ, किसी दुश्मन को देख करके या जिसको देख करके इंसान को गुस्सा आता है, नफरत है जिस शख्स से, उसको देख करके ये कहना मलिकुल मौत आ गया, या ये कहना कि मैं इस दुश्मन से इतनी नफरत करता हूँ जैसा कि मैं मलिकुल मौत से नफरत करता हूँ वैसा, तो अगर इसमें मलिकुल मौत अलैहिस्सलाम यानी सैदना इसराइल अलैहिस्सलाम की तौहीन मुराद है तो ये यकीनन कुफर है। और अगर ये कहने के लिए कहता है कि मुझे मौत से असल में जितनी कराहत महसूस होती है उस तरह कराहत महसूस करता हूँ तो ये कुफर नहीं है। और इसी तरह जिस तरह सैदना इसराइल अलैहिस्सलाम की तौहीन कुफर है, इसी तरह जिब्रील अलैहिस्सलाम की या मीकाईल अलैहिस्सलाम की, बल्कि किसी फरिश्ते को जो शख्स ऐब लगाए या उस फरिश्ते की तौहीन करे तो वो का शख्स काफिर है। बात वाज़ह है। मसला नंबर 38, कुरान पाक की किसी आयत को ऐब लगाना या उसकी तौहीन करना या उसके साथ मसखरापन करना कुफर है। मसलन दाढ़ी मुंडाने से मना करने पर अक्सर दाढ़ी मुंडे कह देते हैं कल्ला सौफत आलमून, ये सूरह अलहकमत तकासुर की आयत करीमा का एक हिस्सा है, तो वो ये माजल्ला ये आयत करीमा पढ़ करके ये लेते हैं मतलब, जिसका मतलब ये बयान करते हैं कि कल्ला साफ करो, ये कुरान मजीद की तहरीफ और तब्दील भी है, इसके साथ मजाक और दिल लगी भी। तो क्योंकि लफ्ज़ कल्ला सौफा तालमून लिखा हुआ है, वो सौफा से मुराद लेते कि इसको साफ़ करने को कहा गया है, दाढ़ी को साफ़ करने को कहा गया है, तो इसमें सुन्नत की माज़ल्ला एक मजाक भी पाया जाता है। और कुरान इससे बढ़कर जो गलती है वो क्या है कि कुरान पाक की आयत को तब्दील करने की कोशिश, उसका मजाक उड़ाने की कोशिश, कुरान मजीद को तहरीफ यानी तब्दील करने की कोशिश है, तो ये दोनों बातें कुफ्र हैं। इसी तरह अक्सर बातों में कुरान मजीद की आयतें बेमौका पढ़ दिया करते हैं और माज़ल्ला मकसूद हंसी करना होता है, जैसे किसी को नमाज बाजमात के लिए बुलाया, वो कहने लगा मैं जमात से नहीं बल्कि तनहा पढ़ूंगा, क्योंकि अल्लाह ताला फरमाता है इन सलात तनहा, क्योंकि कुरान पाक में लिखा हुआ है इन सलात तनहा। असल में इसका तर्जुमा मैं अर्ज कर देता हूँ, इन सलात तनहा का मतलब होता है कि बेशक नमाज रोकती है, तनहा यानी रोकती है किन चीज़ों से, इन सलात तनहा मिन अनिल फहशाई वल मुनकर वल बग्य, बेशक नमाज जो है वो बुराइयों से, फहाशी से और बगावत से वगैरह से रोकती है। यह लफ्ज़ तनहा जो है यह अरबी का वर्ड है, इसका मतलब होती है कि रोकती है, लेकिन वहाँ पर वो उसका उर्दू का जो है तलफ़ुज़ ले करके उसका मतलब निकाल के कहता है कि कुरान में तो लिखा है कि नमाज तनहा है, नमाज इन सलात तनहा, नमाज तनहा है तो मैं जमात से नहीं पढ़ूंगा। तो इस तरह की तहरीफ करना या माज़ल्ला मजाक उड़ाना ये भी कुफ्र है। मसला नंबर 39, मजामीर के साथ कुरान पढ़ना कुफ्र है। मजामीर मतलब ढोल ताशा गाने बाजे के जो औजार होते हैं जो भी, उसको मजामीर कहते हैं। तो मजामीर के साथ कुरान पाक पढ़ना कुफ्र है। अब इससे क्या महसूस होता है कि मजामीर अच्छी चीज़ नहीं है, ठीक है, और मजामीर के साथ पढ़ा कुरान पढ़ना कुफ्र क्यों है, इसलिए कि इसमें कुरान पाक की तौहीन है, इसमें कुरान पाक की तौहीन है। तो आगे यहाँ पर अल्लामा साहब इरशाद फरमाते हैं कि ग्रामोफोन में कुरान सुनना मना है अगरचे ये बाजा नहीं, बल्कि रिकॉर्ड में जिस किस्म की आवाज़ भरी होती है वही उससे निकलती है, अगर बाजे की आवाज़ भरी जाए तो बाजे की आवाज़ सुनने में आएगी और नहीं तो नहीं, मगर ग्रामोफोन अमूमन लहव लाइव की मजालिस में बजाया जाता है और ऐसी जगह कुरान मजीद पढ़ना सख्त ममनू है, ठीक है। अब ये चूँकि किताब पुराने ज़माने में लिखी गई है तो आपने यहाँ पर ग्रामोफोन की मिसाल दी है, तो उस ज़माने में ग्रामोफोन जो है ना घरों में नहीं होता था, ग्रामोफोन जो है नौटंकी की जगह पे और क्लब वगैरह की जगह पे होता था, जहाँ पर लोग मिल करके जो है दूसरे मशागिल में मशगूल होते थे, जैसे डांस पार्टी वगैरह वगैरह इस तरह की जगहें होती थी जहाँ पर ग्रामोफोन पर गाने बाने बजाए जाते थे। उस ज़माने में बड़ी सी वो आती थी रिकॉर्ड, ठीक है, उस रिकॉर्ड को बजाते थे, तो वो इतना बड़ा पीस होता था कि हर किसी के घर में आ भी नहीं सकता था, लिहाजा ये ख़ास ख़ास जगहों पर मौजूद होता था। तो उस ज़माने के एतबार से अल्लामा साहब ने लिखा कि ऐसी जगह कोई जगह ही अच्छी नहीं है वहाँ पर, ये जो है वहाँ पर दूसरे उस ग्रामोफोन में दूसरी गंदी चीज़ें भी बजाई जाती है, ढोल ताशे वगैरह गाने वगैरह बजते हैं, और वो जगह ऐसी है वहाँ पर नेकी के काम नहीं किए जाते हैं, वहाँ पर दूसरे काम किए जाते हैं। तो ऐसी जगह पर रिकॉर्ड पर कुरान पाक ने उसमें लगा करके सुनना, उसको अल्लामा साहब ने जायज़ नहीं बताया। आज के ज़माने में तो ग्रामोफोन ही तकरीबन नापैद हो गया, आज के ज़माने में टेप रिकॉर्ड था, टेप रिकॉर्ड भी तकरीबन ख़त्म हो गया, अब सीडी प्लेयर्स, MP3 प्लेयर्स और दूसरे जदीद आ गए, तो उनके ज़रिए कुरान पाक सुनना जायज़ है। लेकिन उसके ज़रिए अगर किसी ने कहा कि इसको मैंने सुना तो अब इसमें आयत सजदा कोई आई, तो उसके ज़रिए आयत सजदा सुनने का, तो उस पर सजदे तिलावत वाजिब नहीं होगी। और ग्रामोफोन या किसी और ज़रिए से कुरान पाक की आयत सुनने में सवाब के बारे में कुछ उलमा का इख्तलाफ है कि उसमें सवाब है या नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा कि अफजल यही है कि किसी आदमी की आवाज़ से उसको सुना जाए। ये जो रिकॉर्डेड जो होती है टेप रिकॉर्ड के ज़रिए, MP3 प्लेयर के ज़रिए या किसी भी और जदीद आलात के ज़रिए जो कुरान पाक सुना जाता है, इसमें उलमा का इख्तलाफ है कि इसमें वो सवाब मिलेगा या नहीं। मसला नंबर 40, किसी से नमाज़ पढ़ने को कहा, उसने जवाब दिया नमाज़ पढ़ता तो हूँ मगर उसका कुछ नतीजा नहीं, या कहा तुमने नमाज़ पढ़ी क्या फ़ायदा हुआ, या ये कहा कि नमाज़ पढ़ के क्या करूँ, किसके लिए नमाज़ें पढ़ूँ, माँ बाप तो मर गए, या ये कहा बहुत पढ़ ली अब दिल घबरा गया, या ये कहा कि पढ़ना ना पढ़ना दोनों बराबर है। गर्ज़ उस किस्म की बात करना जिससे फर्जियत का इनकार समझा जाता हो या नमाज की तहकीर होती हो, ये सब कुफ्र है, ये सब कुफ्र है। तो असल बात यह है कि जुमले जो अलामा साहब ने पेश फरमाए हैं, ये मिसालें दी हैं, जो चीज़ समझने की है वो क्या है कि नमाज की फर्जियत का इनकार सीधा सीधा डायरेक्टली कर ले, या किनायतन करे, या कुछ ऐसे जुमले बोले जिससे ये महसूस हो कि नमाज की फर्जियत का इनकार कर रहा है, तो वो कुफ्र है, या फिर कुछ ऐसे जुमले बोले जिससे नमाज की तहकीर होती हो, हिकारत से वो बात कर रहा है, मतलब उसकी जो अजमत है उसको वो माज़अल्लाह गिरा रहा है, बल्कि उसकी जो है वो तोहीन कर रहा है, तो ये भी यकीनन कुफ्र है। मसला नंबर 41, कोई शख्स सिर्फ रमज़ान में नमाज़ पढ़ता है, बाद में नहीं पढ़ता, और कहता है कि यही बहुत है या जितनी पढ़ी यही ज़्यादा है, क्योंकि रमज़ान में एक नमाज 70 के बराबर है, ऐसा कहना कुफ्र है, इसलिए कि उससे भी नमाज की फर्जियत का इनकार मालूम होता है। समझ आ गई? अब रमज़ान में आपको पता है कि एक नमाज पढ़ने का सवाब 70 गुना ज़्यादा है, ये नहीं कि 70 नमाजें उसने पढ़ी, उसका सवाब 70 गुना ज़्यादा है, ये नहीं कि 70 जो है उसको माफ़ हो गई, एक पढ़ी तो बाकी 69 माफ़ हो गई, ऐसा नहीं है, सिर्फ सवाब में अल्लाह के फजल से ज़्यादती है, और उसकी वजह से ये ना कह सक ये कोई नहीं कह सकता, बल्कि ये कहना कुफर हो जाएगा कि जो नमाज रमज़ान में पढ़ ली अब बाकी जो है 69 जो है वो पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, तो वो माज़अल्लाह कुफर है। इसी तरह कुछ लोग जो है वो सवाल भी करते हैं कि कज़ाए उम्री पिछली 25 साल की बाकी है, तो रमज़ान में अगर मैं कज़ाए उम्री कर दूँ 1 महीना, हाँ जी, तो जो है वो 70 महीने की निकल गई, या हरम शरीफ में जा कर के 1 महीना जो है कज़ाए उम्री कर लूँ तो 1 लाख बरस की निकल गई, ऐसा नहीं है। यहाँ सवाब मुराद है, असल अदायगी मुराद नहीं है, ठीक है। मसला नंबर 42, अजान की आवाज़ सुनकर ये कहना क्या शोर मचा रखा है, अगर ये कौल बरवजह इनकार हो तो कुफ्र है, यानी माज़ अल्लाह अजान को अजान न समझता हो बल्कि एक मुसीबत समझता हो या माज़ अल्लाह अज़ान को हक ना समझता हो, शोरगुल समझता हो, तो ये बवजह इनकार हुआ, तो ये कुफर है। मसला नंबर 43। रोज़ा रमज़ान नहीं रखता और कहता यह है कि रोज़ा वो रखे जिसे खाना न मिले, या कहता है जब खुदा ने खाने को दिया है तो भूखे क्यों मरे, या इसी किस्म की और बातें जिनसे रोज़े की हतक व तहकीर हो कहना कुफर है। तो असल में रोज़ा क्या है? शियार इस्लाम है, शियार इस्लाम है, इस्लाम की निशानी है, और रोज़ा फ़र्ज़ है, रोज़ा बहुत बड़ी इबादत है, फ़र्ज़ है। तो उसका इनकार करना ये भी कुफर, और उसकी तौहीन करना, तहकीर करना ये भी कुफर है। तो इस किस्म का जुमला जिससे मैं पता चलता हो कि ये माज़ अल्लाह रोज़े की तज़ीम करने के बदले उसकी तहकीर कर रहा है, तो कुफर है। मसला नंबर 44। इल्म दीन और उलमा की तौहीन बेसबब, यानी महज इस वजह से कि आलिम इल्म दीन है, ये कुफर है। ठीक है, अभी जैसे कि अब मैं पूरा पढ़ के फिर इंशाल्लाह इस पे वजाहत पेश करते हैं। यूं ही आलिम दीन की नकल करना, मसलन किसी को मिंबर वगैरह किसी ऊंची जगह पर बिठाएं और उससे मसाइल बतौर इस्तेहज़ा दरियाफ्त करें, फिर उसे तकिया वगैरह से मारें और मजाक बनाएं, ये कुफर है। ये आलमगीरी में लिखा है। यूं ही शरा की तौहीन करना, मसलन कहे मैं शरा वरा नहीं जानता, या आलिम दीन मुहताद का फतवा पेश किया गया, उसने कहा मैं फतवा नहीं मानता, या फतवा को ज़मीन पर पटक दिया, ये सब कुफर है। अब इसमें कुछ चीज़ें वजाहत करनी है। इल्म दीन और उलमा की तौहीन इस सबब से अगर करे, इस सबब से अगर करे कि इल्म दीन जो है अच्छी चीज़ नहीं है, या आलिम की तौहीन इसलिए करे क्योंकि वो आलिम है, इल्म दीन उसने हासिल किया, अब वो घटिया इंसान हो गया, तो ये कुफर है। समझ में आता है? अब कुछ लोग होते हैं कि किसी आलिम दीन से बुग्ज़ रखते हैं, या किसी आलिम की मुखालफत करते हैं, या कभी कभी किसी आलिम से दुश्मनी भी हो जाती है, या किसी आलिम से इल्म की बुनियाद पे कुछ मुखालफत हो जाती है, तो उनकी कभी कभी वो तौहीन करते हैं। ठीक है, तो ये तौहीन करना गुनाह ज़रूर है लेकिन कुफर नहीं, क्योंकि यहाँ पर उस आलिम की तौहीन इसलिए नहीं कर रहा कि वो आलिम दीन है, वहाँ पर आलिम की तौहीन इसलिए कर रहा है क्योंकि उसकी कोई उससे मुखालफत है। ठीक है, जो दीनी बुनियाद पे भी हो सकती है या दुनियावी बुनियाद पे भी हो सकती है, लेकिन आलिम को आलिम होने की वजह से उसकी तहकीर करें, ठीक है, जिस तरह किसी दुनियादार की ताज़ीम करता है दौलत की वजह से, तो ये बुरा है, ये बुरा है। और आलिम की तहकीर करें इसलिए कि वो आलिम दीन है, तो ये कुफर है। आप समझ में आ गई? यूं ही आलिम दीन की नकल करना, मसलन किसी आदमी को मिंबर पे बिठाया, ऊंची जगह पर बिठाया, और फिर एक नौटंकी की तरह उससे जो है हंसी मजाक करते हुए सवाल जवाब किया, शरी सवाल जवाब किए, और फिर उसे जवाब दिया तो खूब कह कह के मार के हंस रहे हैं और मजाक उड़ा रहे हैं, और फिर उसको जैसे मजाक में जैसे खेलते कूदते हैं बच्चे, उस तरह तकिया मार रहे हैं, वो भी तकिया मार रहा है, वो एक दूसरे को जो है ये कर रहे हैं किसी आलिम दीन की समझे तोहीन करने के लिए, तो ये मजाक करना ये कुफर है, क्योंकि इसमें इल्म की और आलिम की तोहीन मुराद है, इल्म दीन की भी तोहीन मुराद है और आलिम दीन की भी तोहीन मुराद है। यूं ही शरा की तोहीन करना, यानी शरीयत पाक की तोहीन करना, मसलन उससे कोई कहे कि मैं शरा वरा को नहीं मानता, या आलिम दीन मुहताद का फतवा पेश किया गया, उसने कहा मैं फतवा नहीं मानता, या फतवे को ज़मीन पे पटक दिया, ये कुफर है। अब यहाँ पर देखें कितनी मोहताद हिसाब से लिखा है अल्लामा साहब ने, कि अगर उसको शरीयत की बात बताई जाए वो कहे मैं शरीयत को मानता ही, तो ये शरीयत की तोहीन है, माज़ल्लाह कुफर है। और आगे लिखते हैं कि आलिम दीन मोहताद का फतवा पेश किया गया, कि जिसके बारे में पता है कि आलिम दीन है और इसका फतवा मोहताद है, उस फतवे को अगर पेश किया गया कि ये फतवा सही है, तो अगर उस फतवे पे अमल ना करना चाहे आदमी, अगर उस फतवे पे अमल को अमल ना करना चाहे, तो ये उसका अपना ज़ाती फेल है, गुनहगार होगा अगर उस फतवे पर अमल ना करे तो, ठीक है ना। लेकिन अगर वो उस फतवे की तौहीन करे कि मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता, या उस फतवे को माज अल्लाह ज़मीन पे पटक दिया, तो उस फतवे को ज़मीन पे पटकना भी कुफ्र है। हालांकि किसका लिखा हुआ है, किसी मोहतात मुफ्ती का लिखा हुआ है, मोहतात मुफ्ती का, आम आदमी की बात नहीं करें, मोहतात मुफ्ती का, आलम दीन का लिखा हुआ फतवा है, उसको ज़मीन पे पटक दिया। तो उसमें जो अल्लाह उसके रसूल के नाम लिखे हुए हैं, कुरान पाक की आयत लिखी हुई है, शरीयत मुताहरे का फैसला लिखा हुआ है, उसकी उसने तौहीन की, लिहाजा वो कुफ्र है। मसला नंबर 45, किसी शख्स को शरीयत का हुक्म बताया कि इस मामले में ये हुक्म है, उसने कहा हम शरीयत पर अमल नहीं करेंगे, हम तो रस्म की पाबंदी करेंगे, ऐसा कहना बाज़ मशायख के नज़दीक कुफ्र है, बाज़ मशायख के नज़दीक कुफ्र है। और कम अज़ कम ये तो है, मासियत तो ज़रूर है कि उन्होंने कहा कि हम ये फॉलो नहीं करेंगे, हम तो रस्म के हिसाब से चलेंगे, तो कम अज़ कम ये हुआ कि गुनाह तो किया है उन्होंने, गुनाह तो किया। और बाज़ मशायख ने कहा कि शरीयत का इनकार करने की वजह से, बाज़ मशायख ने लिखा कि कुफ्र है। अब इस पर एक बात याद आई, हिंदुस्तान में एक कबीला कह सकते हैं लोग रहते हैं, उनका नाम है कच्छी मेमन, हिंदुस्तान में ये मेमनों में से एक दूसरी एक ज़ात है, उनका नाम है कच्छी मेमन। तो उनके नज़दीक ये था कि लड़कियों को शादी के वक्त अच्छा खासा दहेज देते थे, अच्छा खासा दहेज देते थे। उस दहेज में ये होता था, उनकी उनकी सोच थी कि अगर लड़की को दहेज अच्छा देंगे तो उसका रिश्ता भी जल्दी हो जाएगा, वगैरह वगैरह। तो अच्छा दहेज देते थे, वो उसमें घर जेवर वगैरह जो उस ज़माने के हिसाब से था वो देते थे। फिर वो क्या करते थे कि जब विरासत तकसीम होने का वक्त आता, विरासत तकसीम होने का वक्त आता, तो अपनी बेटी को विरासत से निकाल देते थे, अपनी बेटी को विरासत से निकाल देते थे। और अगर विरासत लिखा ना भी हो तो उसके भाई वगैरह जो है उसको विरसे में से कोई हिस्सा नहीं देते थे, और कहते थे कि जो तेरी शादी में खर्च हुआ और जो तेरे दहेज में घर जेवर वगैरह दिया, वही तेरा हिस्सा है, वही तेरा हिस्सा है। तो उलमा इकराम ने बताया कि ये सही नहीं है, उसको हिस्सा मिलना चाहिए, इसलिए कि औरत का, बेटी का हिस्सा जो है कुरान पाक में अल्लाह ताला ने मुकरर फरमाया है। जो आपने शादी में खर्च किया वो तो खर्चा है, वो आपकी तरफ से हिबा है, वो आपकी तरफ से तोहफा है, वो आपकी तरफ से तोहफा है, उसको विरासत में से आप निकाल नहीं सकते। उन्होंने इनकार किया, उन्होंने इनकार किया कि नहीं, हमने जो दे दिया वो दे दिया, अब विरासत में से नहीं देंगे। तो उन लोगों पर उलमा इकराम ने कुफर का फतवा लगाया कि तुम रस्म को निभा रहे हो और कुरान पाक की आयत को साफ इनकार कर रहे हो कि हम नहीं देंगे और यही हमारा चलेगा। तो उस पर कुफर का फतवा लगा था कि ये अमल करना नहीं देना, ये अपनी जगह एक बहुत बड़ा गुनाह ज़रूर था। अब इनकार करना कि हम नहीं दे सकते, नहीं देंगे, जो दिया वही उसका विरसा था। तो उलमा ने कहा कि तुम कुरान पाक की साफ दलील का रद्द कर रहे हो, इनकार कर रहे हो, तो ये कुफर है। तो अल्लाह तबारक व ताला ने उनको तौफीक अता फरमाई होगी, तो उन्होंने उसको ख़त्म किया, उस रस्म को भी। एक और मसला, ये बड़ा ख़तरनाक है, लोगों को इस पे गौर करना चाहिए। मसला नंबर 46, शराब पीते वक्त, ये कौन सा गुनाह है, ये सख्त हराम। क्या है, शराब पीते वक्त या जिना करते वक्त, ये भी सख्त हराम, या जुआ खेलते वक्त, ये भी हराम, या चोरी करते वक्त, ये भी हराम। तो शराब पीते वक्त, या जिना करते वक्त, या जुआ खेलते वक्त, या चोरी करते वक्त बिस्मिल्लाह कहना कुफर है, बिस्मिल्लाह कहना कुफर है। दो शख्स झगड़ रहे थे, एक ने कहा ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह, तो दूसरे ने कहा ला हौल का क्या काम है, या ला हौल में मैं क्या करूं, या ला हौल रोटी की जगह काम ना देगा, ये लाहौल शरीफ की तौहीन हुई, लिहाजा कुफर है। यूं ही सुबहान अल्लाह और ला इलाहा इल्लल्लाह के मुतअल्लिक इस किस्म के अल्फाज कहना भी कुफर है। मसला नंबर 47, बीमारी में घबरा कर कहने लगा तुझे, यानी अल्लाह पाक से कह रहा है, बीमारी में घबरा कर कहने लगा तुझे इख्तियार है चाहे काफिर मार या मुसलमान मार, ये कुफर है, ये कुफर है। इसलिए कि वो अल्लाह की सज़ा से, जहन्नम से डर नहीं रहा, दूसरा ये کہ اس کے نزدیک کفر اور ایمان ایک جیسی چیز ہو گئی تو وہ یہ کہنا کفر ہے. یوں ہی مصائب میں یعنی مصیبتوں میں مبتلا ہو کر کہنے لگا, اللہ سے شکایت کرتے ہوئے کہنے لگا, تو نے میرا مال لیا اور اولاد لے لی اور یہ لیا وہ لیا, اب کیا کرے گا اور کیا باقی ہے جو تو نے کیا؟ اس طرح بکنا کفر ہے, اس طرح بکنا کفر ہے. اسی لیے پہلے بھی وہ مسئلہ گزرا کہ بہت زیادہ غربت جو ہے وہ کفر کے قریب ہے یا کفر جیسی ہو جاتی ہے کہ اس میں انسان بہت زیادہ پریشانی دیکھ کر کے معاذ اللہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا بھی انکار کرتا ہے اور معاذ اللہ کفر بک دیتا ہے. مسئلہ نمبر 48, مسلمان کو کلمات کفر کی تعلیم و تلقین کرنا کفر ہے. یعنی کسی مسلمان کو کہا کہ یہ بول دو یہ بول دو, یہ کفر ہے اگرچہ کھیل اور مذاق میں ایسا کرے, اگرچہ کھیل اور مذاق میں ایسا کرے. اب پھر سے میں عرض کرتا ہوں کہ مسلمان کو کلمات کفر کی تعلیم و تلقین کرنا کفر ہے, اس لیے ہے کہ اگر وہ کفر بکے گا تو وہ کافر ہو جائے گا. تو جس نے تلقین کی وہ سامنے والے نے بولا یا نہیں بولا یہ آدمی کافر ہو گیا. سمجھ میں بات آئی؟ جس نے تلقین کی کہ چلو ایسا بولتے ٹھیک ہے نا, تو اس مسلمان نے بولا یا نہیں بولا ٹھیک ہے, یہ بولنے والے نے یہ تلقین کرنے والے سکھانے والا کافر ہو گیا. اگرچہ کھیل اور مذاق میں ایسا کرے, تو جو کہتے ہیں نا کہتے ہیں نا کہ ہم تو کھیل اور مذاق میں جو ہے وہ بت کی پوجا کر رہے تھے اور نوٹنکی میں بت کی پوجا کر رہے تھے یا فلم میں شوٹنگ ہو رہی تھی تو میں تو ایکٹر ہوں معاذ اللہ, تو ایکٹر کی وجہ سے جو ہے یہ بت کے سامنے سجدہ وغیرہ کیا, ہر حال میں کافر ہو گیا, ہر حال میں کافر ہو گیا. یوں ہی کسی کی عورت کو کفر کی تعلیم کی اور یہ کہا تو کافر ہو جا تاکہ شوہر سے پیچھا چھوٹے, تو عورت کفر کرے یا نہ کرے یہ کہنے والا کافر ہو گیا. وہ پہلے مسئلے کی دوسری وضاحت ہے, کسی دوست کو کہا چلو مذاق میں کہتے ہیں نہیں کہتے, اس نے کیا یا نہیں کیا یہ آدمی کافر ہو گیا. اور یوں ہی کسی عورت کو کہا کہ شوہر سے طلاق لینے کے لیے کفر بک دے تاکہ شوہر تجھے طلاق دے دے اور پھر آپس میں شادی کریں گے وغیرہ وغیرہ, تو وہ عورت بولے یا نہ بولے یہ اکسانے والا کافر ہو گیا. اب اس پہ ایک چیز یاد آئی کہ مسلمان کو کلمات کفر کی تعلیم دینا کیا ہے, یہ تو شیطان کا کام ہے, کھلم کھلا شیطان کا کام ہے. اور یہ کیا کرتا ہے, حتیٰ کہ انسان کی نزا کا وقت جو آتا ہے اس میں بھی شیطان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ اس کو اللہ کی وحدانیت سے عقیدے سے دور کیا جائے. حتیٰ کہ پیاس جب لگتی ہے تو وہ پانی کا پیالہ لے کر کے سامنے آتا ہے اور کہتا ہے میں تجھے پانی دیتا ہوں, میں تیرا رب ہوں, یہ مجھے تو اپنا رب مان لے. تو کفر کی تلقین کرنے والا شیطان ہے, اور کفر سے مسلمان کو کفر سے بچانے والا وہ اللہ کا دوست ہے. ٹھیک ہے, اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ جو ہم سیکھ رہے ہیں کہ مرتد کے احکام جو ہے عام کافر سے بھی سخت تر ہیں, لہذا کسی عام کافر کو مسلمان بنانا اس میں ثواب تو بہت ہے, بے شک آپ نے اس کو جہنم سے نکال کر کے جنت کا راستے پر لے آئے, تو اس میں ثواب بے حساب بے شک بہت ہے. تو کسی عام کافر کو مسلمان بنا دینا یہ اس میں یقیناً بہت بڑا ثواب ہے, اس سے زیادہ ثواب اس میں ہے کہ کسی مسلمان کو مرتد ہونے سے بچا لینا. کسی مسلمان کو مرتد ہونے سے بچا لینا, اور یہ عظیم کارنامہ شاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو 14ویں صدی کے مجدد ہیں انہوں نے یہ کیا ہے, لاکھوں نہیں کروڑوں لوگوں کو جو ہے کفر کے گڑھے میں گرنے سے بچایا ہے. ٹھیک ہے, تو جو لوگ کہتے ہیں نا کہ یہ بتائیے کہ اعلیٰ حضرت نے کتنے لوگوں کو مسلمان بنایا, بھائی جتنے مسلمان ابھی نظر آ رہے ہیں وہ انہی کی وجہ سے, ورنہ وہ سب پتہ نہیں کون کون سے معاذ اللہ کفریات میں پڑے ہوتے, وہ سارے مسلمان ان کے مرہون منت ہے کہ سارا کے سارا سب کا ایمان جو ہے اعلیٰ حضرت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بچایا ہے اور اس کا سہرا اعلیٰ حضرت پہ جاتا ہے. اسی طرح لوگ کہتے ہیں حضور مفتی اعظم نے کتنے لوگ مسلمان بنایا, بے وقوف حضور مفتی اعظم کے مریدوں کو دیکھ لو اور اعلیٰ حضرت کے مریدوں کو دیکھ لو, انہوں نے کتنے کروڑوں لوگوں کو مسلمان بنایا ہے, اور حضور مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شدھی موومنٹ کے خلاف جو کام کیا اس میں آپ نے کتنے لوگ معاذ اللہ مرتد ہو چکے تھے ان کو دوبارہ مسلمان بنایا, ان کو بھی دوبارہ مسلمان بنایا, तो ये कितना अजीम कारनामा है। कहा जाता है कि जब शुद्धि मूवमेंट चली थी, जिस तरह आजकल आरएसएस जो है कोशिश कर रही है, बीजेपी कोशिश कर रही है मुसलमानों को माज़ अल्लाह ये कह करके कि असल में तो तुम हिंदू थे, अब
घर
जो है
वापसी,
घर वापसी की बात करते
वापसी
हैं, वो कहते हैं कि असल में तुम हिंदू थे और तुमको ज़बरदस्ती जो है वो कलमा पढ़ाया गया है और ये वगैरह वगैरह, आप चलो वापस चलो, किस तरफ, उस गलीज दीन की तरफ वापस आ जाओ, बुत परस्ती की तरफ वापस आ जाओ। तो इस तरह की मूवमेंट चली थी, ये तकरीबन 1950 या 60 की बात है।
जी।
उस ज़माने में हमारे उलमाए कराम ने मिल करके ये शुद्धि मूवमेंट का मुकाबला किया, और जिसमें सर फेरे सबसे आगे उर्दू मुफ्ती आज़म हिंद रहमतुल्लाहि ताला अलैह थे, और उसमें अल्लामा मुफ्ती आज़म हिंद रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने लाखों लोगों को, माशाल्लाह लाखों लोगों को दोबारा मुसलमान करवाया। जिस गांव से गुजरते थे जो लोग मुर्तद हो गए थे वो वापस मुसलमान हो जाते। अब यहाँ पर एक और चीज़ वजाहत कर दूँ, मुसलमान को कलमात कुफर की तालीम और तलखीन करना कुफर है, और किसी काफिर को भी कहना कि तू तेरे बुत की पूजा कर, ये भी कुफर है, ये भी कुफर है। इसका मतलब ये नहीं कि चलो तो पहले ही काफिर था तो इसमें क्या फ़र्क पड़ गया, नहीं, इसमें फ़र्क ये पड़ा कि तूने उसको और कुफर में धकेला और तू भी कुफर से राजी है, इसीलिए तू भी काफिर हो गया। तू कुफर से राजी है इसीलिए तो तूने बोला कि तू गणेश की पूजा कर, राम की पूजा कर ले वगैरह वगैरह। और इसमें पेश पेश आपको सब पता है कि डॉक्टर ताहिरुल कादरी का मामला है वेम्बली में, उसने 2011 में एक नहीं दो नहीं दर्जनों कुफर के पेशवा उनको माइक दे करके कहा कि तुम अपने खुदा को उस तरह पुकारो जिस तरह तुम्हारे दीन तुमको सिखाता है। तो इसमें कुफर की, उस आदमी के मुर्तद हो जाने की जिसने ये कहा, कोई शक है ही नहीं। मसला नंबर 49, होली और दिवाली पूजना कुफर है। होली और दिवाली पूजना कुफर है कि ये इबादत गैरुल्लाह है। अब होली क्या है? होली वो त्यौहार है हिंदुओं में जिसमें वो लोग एक दूसरे पर रंग फेंकते हैं, ठीक है, और दिवाली वो त्यौहार है जिसमें वो रोशनी जलाते हैं, पटाखे फोड़ते हैं वगैरह वगैरह, किस्म के फायरवर्क्स जिसको कहते हैं वो जलाते हैं। ये दो काम करना, रंग उड़ाना और पटाखे फोड़ना, इस तरह के काम करना, ये होली और दिवाली को मनाने के अलावा भी अगर ये दो काम करे तो ये हराम ज़रूर है, ये दोनों हराम ज़रूर है। अगर इस वास्ते से करे कि आज होली है और हिंदुओं का त्यौहार है, बुतों की पूजा की जहन में हो कि हाँ आज इन बुतों की पूजा हो रही है तो आज होली मनाएंगे और आज दिवाली करेंगे इसलिए कि फलां बुत ने आज जो है फतह हासिल की थी, तो इस मकसद से किया और हिंदुओं के साथ मिलकर या हिंदुओं के साथ मिलकर के किया, तो ये कुफर है। क्या है? कुफर है, क्योंकि ये दोनों जो त्यौहार हैं, ये दोनों त्यौहार क्या हैं, ये असल में उन देवी देवताओं की पूजा की वजह से ये मनाए जाते हैं। तो अगर सिर्फ होली फेंका या लाइट वाइट जलाया इस तरह किया तो हराम है, लेकिन उस मकसद से किया कि आज देवी देवताओं की पूजा हो रही है, चलो हम भी इनके साथ शामिल हो जाएं, तो ये कुफर है। इसीलिए अल्लामा साहब ने लिखा पूजना पूजना कुफर है कि ये इबादत गैरुल्लाह है। कुफार के मेलों में या त्यौहारों में शरीक होकर उनके मेले और जुलूस मजहबी की शान और शौकत बढ़ाना कुफर है। जैसे लोग कहते हैं ना कि हम गणपति को आज डुबाने जा रहे हैं, तो बहुत सारे लड़के बोले आज मज़ा आएगा, आज मज़ा आएगा, तो गणपति डुबाने का जो जुलूस निकलता है, हिंदू तो पता नहीं क्या क्या कर रहे होते हैं, उसकी पूजा भी कर रहे होते हैं, उस पर रंग उड़ा रहे होते हैं और गाने गा रहे होते हैं और जो है वो भजन गा रहे होते हैं, उस मस्ती में शामिल हो जाना मुसलमान लड़के का, ये कुफर है। क्यों? क्योंकि ये खास पूजा का त्यौहार है, ठीक है, और उस त्यौहार की शान और शौकत बढ़ाने के लिए, नंबर बढ़ाने के लिए ये भी शामिल हो गया, तो ये करना माज़ अल्लाह कुफर है। कुफार के मेले और त्यौहारों में शरीक होकर उनके मेले और जुलूस मजहबी की शान और शौकत बढ़ाना कुफर है, जैसे रामलीला और जन्माष्टमी और रामनवमी वगैरह के मेलों में शरीक होना, ठीक है। अब इसमें आप देखिए, रामलीला के अंदर शामिल होना और जन्माष्टमी, जन्माष्टमी वो है जिस दिन कृष्णा पैदा हुआ उसको मनाते हैं, और रामनवमी ये पता नहीं कोई और त्यौहार है इनका, उनमें उन मेलों में शामिल होना कि चलो हम भी शामिल होंगे और ये लोग हमको देखकर भी खुश हो जाएंगे वगैरह, ये कुफर है। अब इसमें देखिए, एक शख्स है उबैदुल्ला आजमी, उबैदुल्ला आजमी, वो बाकायदा राम कथा सुनाने की जो महफिल थी, राम कथा सुनाने की जो महफिल थी, जिसमें कोई एक शख्स है मुरारी बापू, मुरारी बापू राम कथा सुनाने की जो है वो महफिल लगाता था, जो भी उसको कह सकते हैं उनके हिंदू रस्म में, उसमें वो शामिल होकर के वहां जा करके राम की तारीफ करके आया, राम की तारीफ करके आया। फतावे रजविया में साफ लिखा हुआ है कि उनके देवी देवताओं की तारीफ करना या उनके किसी फेल की तारीफ करना कुफर है। समझ आई? आगे, यूं ही उनके त्योहारों के दिन महज इस वजह से चीजें खरीदना के कुफार का त्योहार है, ये भी कुफर है। जैसे दिवाली में खिलौने और मिठाइयाँ खरीदी जाती हैं कि आज खरीदना दिवाली मनाने के सिवा कुछ नहीं। उलमा का इस पे फतवा है कि दिवाली थी इसीलिए खरीदा, दूसरे दिन नहीं खरीद सकता था, तो दिवाली मनाने के वास्ते खरीदा। यूं ही कोई चीज़ खरीद कर उस रोज मुशरिकीन के पास हदिया करना जबकि मकसूद उस दिन की ताजीम हो तो कुफर है। उस दिन की ताजीम करना कुफर है। मुसलमानों पर अपने दीन और मजहब का तहफ़ लाजिम है। दीनी अहमियत, दीनी अहमियत यानी जोश और जज्बा, ठीक है? तो वो फरमाते हैं हिदायत के तौर पे कि मुसलमानों पर अपने दीन और मजहब का तहफ़ लाजिम है। दीनी जोश और जज्बा और दीनी गैरत से काम लेना चाहिए। काफिरों के कुफरी कामों से अलग रहें। मगर अफसोस कि मुशरिकीन तो मुसलमानों से इज्तनाब करें और मुसलमान हैं कि उनसे इख्तलात यानी मेलजोल रखते हैं, उसमें सरासर मुसलमानों का नुकसान है। इस्लाम खुदा की बड़ी नेमत है, उसकी कदर करो, और जिस बात में ईमान का नुकसान है उससे दूर भागो, वरना शैतान गुमराह कर देगा और ये दौलत तुम्हारे हाथ से जाती रहेगी, फिर कफे अफसोस मलने के सिवा कुछ हाथ ना आएगा, यानी हाथ मलते रह जाओगे। आगे दुआ फरमाते हैं, हम भी वो दुआ में हम भी दुआ कर लेते हैं। ए अल्लाह अज़्ज़ वजल, तू हमें सिराते मुस्तकीम पर कायम रख और अपनी नाराज़ी के कामों से हमें बचा, और जिस बात में तू राज़ी है उसकी तू हमें तौफीक अता फरमा। तू हर दुश्वारी को दूर करने वाला है और हर सख्ती को आसान करने वाला है। आमीन व रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही मुहम्मद व आलिही व सहाबिही अजमईन वल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।